अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडकोपनिषद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मुंडकोपनिषद का शांति मंत्र है ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा इत्यादि। शांति मंत्र यानी वैदिक प्रार्थना। वेद जब तक जीव भाव है तब तक जीव अल्पज्ञ अल्पशक्ति है, उसे जानना है परमात्मा को आत्मरूप से, अपने सामर्थ्य से और अपनी अल्पबुद्धि से नहीं जान सकता। इसलिए परमात्मा का जो एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वरूप है, उस स्वरूप से सहायता के लिए प्रार्थना करना सिखाते हैं शांति मंत्र। तो परमात्मा का जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वरूप है उसे ही शास्त्रों में परमेश्वर कहा गया, और एक परमेश्वर का रूप है अल्पज्ञ अल्पशक्ति, उसे शास्त्र जीव कहते हैं, और दोनों का वास्तविक स्वरूप है न परमेश्वर स्वरूपतः सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है न जीव स्वरूपतः अल्पज्ञ अल्पशक्ति है। दोनों निर्विशेष ब्रह्मात्मक है। ये विशेषताएं अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता जो जीव तथा ईश्वर में है वो स्वरूपतः नहीं है, उपाधि को लेकर के है। जीव की उपाधि मलिन सत्व प्रधान अविद्या के कारण जीव अल्पज्ञ अल्पशक्ति है। ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान माया है, उसके कारण ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर सहायक बन जाता है जो अपनी सहायता के लिए उसे पुकारता है, उसे प्रार्थना करता है तो सहायक बनता है। और जो सहायता उनसे प्राप्त करना चाहते हैं वह सहायता करता है, जो उसकी प्रार्थना करने वाले आर्त यानी दुखी प्रार्थी हैं वे दुख निवृत्ति की प्रार्थना करते हैं, उनके तात्कालिक सांसारिक दुख को दूर करके उन पर अनुग्रह करता है, उनकी सहायता करता है। अर्थार्थी जो प्रार्थी हैं वे अर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें अर्थ दे करके उनकी सहायता करता है ईश्वर। जिज्ञासु जो हो प्रार्थी है ईश्वर की सहायता ज्ञान के लिए मांग रहे हैं जो, तो जिज्ञासु प्रार्थी को ईश्वर उनके जिज्ञासा का विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव करा करके मोक्ष प्राप्त कराते हैं। जिज्ञासु होता है मुमुक्षु, तो इस प्रकार प्रार्थी तीन ही होते हैं, ज्ञानी प्रार्थी नहीं होता। ज्ञानी की सारी प्रार्थनाएं ज्ञान से समाप्त हो जाती है, प्रार्थना का अर्थ है एक प्रकार से इच्छा। ज्ञानी के लक्षण में सबसे पहला लक्षण तो ये बताया है नस्तित प्रज्ञ के लक्षण में गीता में भगवान ने प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तो उच्यते। समूल सारी कामनाएं यानी प्रार्थनाएं जिसकी समाप्त हो गई, लौकिक विषय विषयक प्रार्थना भी और अलौकिक विषय जो मोक्ष है तद विषयक प्रार्थना भी जिसकी संपन्न हो गई है। ज्ञानी तो मुक्त है ना, तो मुक्त को कोई इच्छा नहीं होती मोक्ष की भी, नहीं तो फिर मुक्त कैसा, फिर तो मुमुक्षु कहलाएगा। सारी इच्छाएं प्रार्थनाएं अज्ञानी में होती है और अज्ञानी तीन प्रकार के हैं भगवान के पास अपनी प्रार्थना लेकर के जाने वाले, और उन तीनों प्रकार के प्रार्थी को भगवान कभी निराश नहीं करते। जो आशा लेकर के जाते हैं उनकी वह आशा पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार शांति मंत्र हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, क्योंकि अल्पज्ञ अल्पशक्ति हम हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, जहां पहुंचने के बाद सारी प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं, जीव ईश्वर का भेद मिट जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान को अपने अनुकूल बनाना, ईश्वर अनुग्रह प्राप्त करना, और ईश्वर का अनुग्रह प्रार्थना से प्राप्त होता है। तो इस वेद का जो शांति मंत्र है भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा इत्यादि ने यही बताया कि ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करने योग्य हमारी उपाधिभूत शरीर इंद्रिया मन बुद्धि बने, हम कृतकर्मा बने कृतोपास्ति बने, अर्थात कर्म का फल जो चित्त शुद्धि है और उपासना का फल जो विक्षेप राहित्य है, उनसे संपन्न हो जाए, शुद्ध चित्त वाले बने और स्थिर चित्त वाले बने। जो शुद्ध चित्त है स्थिर चित्त है अर्थात मल विक्षेप रहित है, वही सच्चा आत्मजिज्ञासु होता है, वही उपनिषदों का अधिकारी है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, मुख्य अर्थ उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या अर्थ है। वह ब्रह्म विद्या दो प्रकार की, सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या। सगुण ब्रह्म विद्या का नाम है उपासना, उसे भी उपनिषदों ने बताया है ना उपासना के स्वरूप को भी, और वो भी अपने उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ बनती है। ऐसे उपनिषद शब्द का अर्थ होता है जो अपने आश्रय को जन्म मरणादि बंधनों से कुछ समय के लिए शिथिल करें, जन्म मरणादि बंधन को शिथिल कर दें, उसे कहा जाता है उपनिषद। तो शिथिल करना का अर्थ होता है ढीला करना, जन्म मरणादि माने जाएंगे मजबूती से बंधे हुए हैं, जन्म मरणादि बंधन से। कब? जब केवल जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, यही व्यापार होता जा रहा है। स्थिति काल जिसका बहुत कम है, जिस जीवात्मा का स्थिति काल अल्प है और बार बार ये जन्मना मरना ही होता जा रहा है, वो होता है जो ब्रह्मा जी की आयु के अंदर बार बार जन्म लेते हैं मरते हैं, ऐसे वो देवता भी है जो यहां पर मनुष्य जीवन में कर्मादि शास्त्र ने बताए हुए करके स्वर्ग में जाते हैं। उनका क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति के अनुसार फिर इसी कल्प में ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के पहले वापस आना होता है, फिर पुण्य कर्म करते हैं फिर स्वर्ग जाते हैं। और पापी तो जायस्व मृयस्व, उनका एक तृतीय मार्ग ही है, ये दो ही व्यापार उनके होते हैं। और ब्रह्मलोक में जो पहुंचते हैं उनको फिर इस कल्प में नहीं आना होता। ब्रह्मा जी की आयु में कई लोग इंद्रादि बदल जाते हैं एक कल्प के अंदर। ये कहा जाता है एक लोमस नाम के ऋषि हैं, पुराणों में आते हैं। वे लोमस नाम के ऋषि, उन्हें वे तपस्या कर रहे हैं और तपस्या के लिए जंगल में गंगा किनारे एक घास फूस की कुटिया बना करके तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते उनके शरीर के जो लोम है, रोम भी जिनको कहा जाता है, जो त्वचा पे बाल होता है ना, हाँ लोम कहते हैं उन्हें, वो जिनके त्वचा में अधिक है सबके ही होते हैं उन्हें लोमश कहा जाता है। तो तपस्या करते करते जब एक इंद्र स्वर्ग के बदल जाता है तो उनका एक लोम शरीर से गिर जाता है। इतने समय बीत जाते हैं उनको तपस्या करते करते। एक बार पूर्व इंद्र की आयु समाप्त तो हुई और दूसरा इंद्र तैयार हो गया वहां पर बैठने के लिए, राज्याभिषेक हो गया। लेकिन पहले इंद्र का जो आवास स्थान था, सभा स्थान था, नए इंद्र को लगा कि ये पुराना हो गया है, इसे बदलना चाहिए, इसका रिनोवेशन करना है, या तो इसको तोड़ करके रीडेवलप में देना है। कितने साल हो गए, तो विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि सुंदर से सुंदर महल हमारे लिए बना देना। तो कहा कि संसार में पहले देख करके आया जाए, आजकल पृथ्वी लोक में भी बड़े अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट हैं, उनको भी देखा जाए, उनकी भी सलाह ली जाए। तो नारद जी के साथ इंद्र भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में आए। तो नारद जी ने कहा, कई जगह दिखाया, पृथ्वी लोक के कई देशों में ले जा करके, फिर भारत में भी आ गए, और जहां लोमस ऋषि तपस्या में बैठे थे तो नारद जी ने कहा नीचे एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, महात्मा हैं, उनका दर्शन करना उचित रहेगा, तो चले उनका दर्शन करते हैं। इंद्र ने कहा अच्छा है, महात्मा का दर्शन कर लेते हैं। गए दर्शन के लिए और उस समय देखा कि पर्णकुटी जीर्ण सी हो रही थी, थोड़ा बहुत बैठे बैठे कुटिया से धूप भी आ रही थी, कुटिया में कहीं कहीं छेद थे, रात में चांदने भी दिखती थी, चांदनियां भी तारे, तो इसलिए इंद्र ने कहा कि आपकी ये कुटिया थोड़ी जीर्ण हुई है, इसको नई बना देते हैं। तो कहा क्या करना है, बहुत सा समय तो निकल गया है, थोड़ा सा बचा है, इसी में गुजर जाएगा आयु का। तो कहा कितना समय बीता और कितना बाकी है, तो दिखाया उनके बाएं तरफ के लोम गिर गए थे और दाहिने तरफ के लोम बाकी थे, पूरे के पूरे यानी 50% लोम गिर गए थे, 50% बाकी थे। कहा ये लोम जो दाहिने साइड में देख रहे हो, जितने होंगे इनको गिन लो, तो इतने इंद्र बदल जाएंगे तब मेरा शरीर शांत होगा, उसके बाद ये तपस्या छूट जाएगी, उतना ही तो समय बचा है। तो एक साइड के भी लोम कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इंद्र समझ गए, कई महल देख करके आए थे, पसंद नहीं हो रहे थे। उसके बाद नारद जी ने कहा कि मुंबई में आजकल अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं, चलो मुंबई चलते हैं, दिखा देते हैं। तो कहे अब नहीं देखना है, चलो अपने वापस, और हमको जो महल है उसी में रहना है, कहीं रीडेवलपमेंट उसको देना ही नहीं है। कहा क्यों? तो कहा ये टूटी फूटी झोपड़ी में भी मेरे जैसे अनगिनत इंद्र की आकर के चले जाएंगे, तब लोमस ऋषि कहते हैं थोड़ी सी आयु बची है, इसमें गुजर जाएगी, तो उस झोपड़ी में उनकी इतनी सारी आयु गुजरनी है, तो मेरा तो उनके सामने कितनी आयु है, समय है जीवन का, ऐसे ही गुजर जाएगा। का मतलब यह है कि आना जाना जो है देवराज इंद्र का भी कई बार होता है, वो लोमस ऋषि के एक एक लोम जितने हैं उतने इंद्र बदल जाते हैं एक कल्प में, वो एक कल्प की आयु है उनकी, लोमस ऋषि की भी। तो ये जो बार बार जन्म होना मरना, तो माना जाता है जन्म मरण रूप बंधन दृढ़ है, मजबूती से बंधा हुआ है, मजबूत है, और उसका ढीला होना है कि इस कल्प में कम से कम रुक जाना, लोमस ऋषि के तरह। लोमस ऋषि का शरीर छूटेगा, लेकिन कब? जब सूर्य चंद्रमा नहीं रहेंगे, ये पांचों महाभूत अपने कारण में विलीन हो जाएंगे, महाप्रलय होगा तब। तो ये माना जाता है शिथिलीकरण, और वो होता है ब्रह्मलोक में, जो जो पहुंचते हैं उनको, सबको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता वहां पर, जो ब्रह्म ज्ञान की साधना मनुष्य शरीर से करके ब्रह्मलोक गए हैं उन्हें तो वहां ब्रह्म ज्ञान होगा, नहीं तो वहां से केवल उपासना करके पहुंचे हुएओं को फिर जन्म लेना पड़ता है पृथ्वी लोक में, लेकिन इस कल्प में नहीं। जब ब्रह्मा जी बदल जाएंगे, महाकल्प महाप्रलय होगा और दूसरी सृष्टि बनेगी, तब तो ब्रह्म लोक में पहुंचने से जन्म मरण शिथिल हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला जो साधन, उस साधन को कहा जाएगा आपके जन्म मरण को शिथिल करने वाला साधन, ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला। और ब्रह्मलोक में कौन पहुंचता है तो उपनिषद बताती है विद्या देवलोक। विद्या कहते हैं सगुण ब्रह्म विद्या को, उपासना को। उपासक ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और फिर ये उपासना उनके जन्म मरण को शिथिल कर देती है। इस कल्प में आना नहीं पड़ता, कल्पांतर में आते हैं। इसलिए गीता में कहा गया आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति अर्जुन। पुनरावृत्ति उनकी भी हो रही है लेकिन महाप्रलय के बाद कल्पांतर में। तो जो उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ, जो ब्रह्मलोक पहुंचा करके उपासक के जन्म मरण को शिथिल करें, वह उपनिषद। क्योंकि सद धातु का अर्थ होता है विशरण, गति, अवसाधन। विशरण का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया शिथिलीकरण, ढीला करना। वो सगुण ब्रह्म विद्या करती है, इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ उपासना भी होगा। और सद धातु का गति अर्थ लेते हैं तो गति का अर्थ प्राप्ति होता है। तो जो यहीं पर आपको निर्विशेष ब्रह्म भाव प्राप्त करा दें, उसे भी कहा जाएगा उपनिषद। तो इसी शरीर में रहते रहते निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराता है ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। मुंडक उपनिषद बताएगी ब्रह्मवेद ब्रह्म वो होती, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ वह ब्रह्म स्वरूप है। तो निर्विशेष ब्रह्म विद्या ये भी उपनिषद शब्द का अर्थ होगा, दूसरा अर्थ लेकर के सद धातु का, जो अपने आश्रय को धने जीव को इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्म भाव प्राप्त करा दे। वो हो गया उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ, वो अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति है, वृत्ति है। और विशरण को लेकर के भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान अर्थ होता है, जो जन्म मरण का हेतुभूत अविद्या काम कर्म को समाप्त कर दे। विशरण का अर्थ होता है नाश। तो जो हमारे जन्म मरण के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का नाश करें, उच्छेद करें, विनाश करें, वह माना जाता है उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ। इस प्रकार शिथिलीकरण रूप अर्थ को लेकर के सगुण ब्रह्म उपासना, ये भी उपनिषद शब्दार्थ है। और उपनिषद शब्दार्थ निर्गुण ब्रह्म विद्या भी है, गति और विनाश रूप अर्थ को लेकर के। और मुंडक उपनिषद, उपनिषद तो सभी है लेकिन अलग अलग शाखा की अलग अलग उपनिषदें हैं। तो उपनिषद शब्द के साथ मुंडक शब्द जुड़ गया तो मुंडक उपनिषद हो गया। मुंडक इसलिए जोड़ा कि ये मुंडक शाखा की है, अथर्ववेद की एक मुंडक शाखा है, उसकी ये उपनिषद है। जैसे यजुर्वेद की एक कठ शाखा होने से उपनिषद शब्द से कठ शब्द को जोड़ दिया तो कठोपनिषद हुआ। कहीं कहीं उपनिषद के प्रथम मंत्रस्थ कुछ शब्दों को जोड़ करके उपनिषद शब्द के साथ उपनिषद का नाम होता है ईशा वाष्योपनिषद, शुरू वाले दो शब्दों को जोड़ दिया। केनोपनिषद एक शब्द को जोड़ दिया तो केनोपनिषद बना। यहां शाखा का वाचक मुंडक शब्द उपनिषद शब्द के साथ जोड़ दिया तो इस उपनिषद का नाम पड़ा मुंडक उपनिषद। और इस मुंडक उपनिषद में मुख्य रूप से पराविद्या का वर्णन करना है, उसे समझाने के लिए अपराविद्या भी बताई जा रही है। तो ब्रह्म विद्या के संप्रदाय परंपरा को शुरू में ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए उपनिषद शब्द के अर्थभूत ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए उसकी परंपरा बताई जा रही है। परंपरा होती है ना, संप्रदाय इसे कहा जाता है। संप्रदाय का अर्थ होता है पूर्वाचार्य के द्वारा परंपरा को चलाने के लिए सम्यक रूप से ज्ञान उत्तर आचार्य को दिया जाता है तो संप्रदान कहा जाता है, संप्रदाय हुआ। पूर्व आचार्यों से उत्तर उत्तर आचार्य लोग शिष्य लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये ब्रह्म विद्या की परंपरा चलती है। तो कैसे प्रारंभ हुई, तो नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम से प्रारंभ होती है, नारायण भगवान से। द्वितीय आचार्य हैं पद्मभव, यहां द्वितीय आचार्य से परंपरा को बताया जा रहा है। पद्मभव कहा जाता है ब्रह्मा जी को, उनको पद्मभव क्यों कहते हैं, इसलिए कि पद्म यानी कमल और भव का अर्थ होता है जन्म। तो नाभि कमल में जन्म हुआ है नाभि कमल से उनका, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं इसलिए वे पद्म भव हैं। और उन्हीं ब्रह्मा जी से उत्तरवर्ती आचार्यों को बताते हुए ब्रह्म विद्या की परंपरा को बताया जा रहा है। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। तो देवानां, इसमें देव शब्द से इंद्रादि देवताओं को लेना और उनमें प्रथम, और प्रथम शब्द का अर्थ होता है प्रधान, ये ब्रह्मा का विशेषण है देवानाम प्रथम। तो प्रथम शब्द के प्रधान अर्थ भी प्रथम शब्द का होता है और प्रथम शब्द का अर्थ शुरू में आदि में प्रारंभ में ये भी होता है। तो यहां पर दोनों अर्थ भाष्कर भगवान ने किए हैं। तो ब्रह्मा जी देवताओं में प्रथम है यानी प्रधान है। देवताओं में ब्रह्मा जी को प्रधान क्यों कहा जाता है, मुख्य क्यों कहा जाता है, इसलिए कि ये जो इंद्रादि देवता हैं अधिदेव में इंद्रादि ब्रह्मा जी के अंग हैं, ब्रह्मा जी अंगी हैं वेदांत प्रक्रिया के अनुसार। समष्टि जो कार्य ये ब्रह्मांड है वो है शरीर ब्रह्मा जी का, इसलिए उनको विराट कहा जाता है ब्रह्मा जी का ही। जब स्थूल उपाधि पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर के रूप में स्वीकार करते हैं तो विराट बन जाता है। तो जैसे हम मनुष्य शरीर में अभिमान करने वाले अपने आप को मनुष्य मानते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी समष्टि शरीर में अभिमान करते हैं तो अपने को विराट मानते हैं। और केवल समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करते हैं तो वे हिरण्यगर्भ कहलाते हैं, ब्रह्मा कहलाते हैं। और इधर जीव कहलाता है तेजस। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं वे अंगी हैं और इंद्रादि देव एक एक अंग है अधिदेव में उनके, तो अंग प्रधान है कि अंगी प्रधान है? अंगी को मुख्य माना जाएगा, अंग को गौण माना जाएगा, क्योंकि एक एक अंग के बिना भी अंगी रह सकता है। सकलांग होना उचित है, विकलांग होना अनुचित है, लेकिन किसी कारणवशात पैर आदि काटना पड़े तब भी अंगी जीवित रहता है ना, एक अंग निकालना पड़े तब भी। इसलिए अंगी जो है जिसके बिना, यानी अंगों के बिना भी अंगी रहता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है, इसलिए अंगी हो गया प्रधान। और अंग का अस्तित्व बिना अंगी के नहीं होता है, इसलिए अंग है गौण। और अंगी जो ब्रह्मा है उनकी प्रधानता का एक और भी हेतु है, वो और हेतु है कि ब्रह्मा जी ईश्वर की प्रथम संतान है, और जब वो उत्पन्न होते हैं तो चार विशेषताओं को अपने साथ लेते हुए ही प्रकट होते हैं। ज्ञानम अप्रतिमम यस्य ऐश्वर्यंच जगतपते। तो ये कहा जाता है कि जिनका ये ज्ञानम अप्रतिमम यस्य वैराग्यंच जगतपते ऐश्वर्यंच धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम्, कि ये जो परमेश्वर ब्रह्मा जी हैं ये चार विशेषताएं अपने साथ लेकर के प्रकट होते हैं, उनको कहीं से प्राप्त नहीं करनी पड़ती, और इंद्रादि देवताओं को प्राप्त करनी पड़ती ये विशेषताएं। वो चार विशेषताएं हैं ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य। ब्रह्मा जी को ज्ञान स्वयं सिद्ध है, केवल विचार से मात्र प्राप्त होता है, उनको किसी आचार्य के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, जन्म के साथ ही उनका असीमित ज्ञान उनके साथ प्रकट होता है। और धर्म, ब्रह्मा बनता कौन है? ईश्वर की प्रथम संतान, ईश्वर अपनी संतान बनाएगा किसको? जिसके पास शुद्ध धर्म है, धर्म ही धर्म है, धर्म के साथ धर्म का विरोधी अधर्म का कोई लेश नहीं है, लेश मात्र भी अधर्म नहीं, और धर्म असीमित है। ये असीमित शब्द सबके साथ लगेगा, अप्रतिम शब्द। अप्रतिम कहा जाता है कि अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसके सदृश दूसरा कोई नहीं है। प्रतिमा कहते हैं उसके सदृश को, तो जिसकी दूसरी कोई प्रतिमा नहीं है ऐसा ज्ञान अप्रतिम ज्ञान कहलाता है। का मतलब अनुपम ज्ञान, जिस ज्ञान की कोई उपमा नहीं है ऐसा ज्ञान ब्रह्मा जी का ऐसे ही अप्रतिम धर्म, अप्रतिम वैराग्य और अप्रतिम ऐश्वर्य ब्रह्मा जी का होता है। इसलिए और बाकी देवताओं का ऐश्वर्य ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के सामने न्यून होता है। वे तो पूरे संसार में एक एक विभाग के अधिपति है। एक प्रकार से जैसे केंद्र में मंत्रिमंडल में प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, वे मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, और फिर एक एक विभाग अपने सहायक के रूप में जिनको मंत्री बनाया है उनको देते हैं, उनका अधिकार उतना ही है अपने अपने विभागों में कुछ करने का जो सहायक है उनका। और प्रधानमंत्री सभी विभागों में अपने इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं, करने का अधिकार उनको है। एक प्रकार से इंद्रादि देवता इनको लोकपाल कहा जाता है। जल मंत्रालय इंद्र के पास है, इसलिए वृष्टि की देवता इंद्र को माना जाता है ना। ऊर्जा मंत्रालय आदित्य के पास है, तो शिक्षा मंत्रालय सरस्वती के पास है, विद्या की देवता है वो। ऐसे अलग अलग जो देवता हैं उनके पास अलग अलग एक एक विभाग है, और उन सारे विभागों के ईश्वर हैं ये ब्रह्मा जी। इसलिए इंद्रादि देवताओं का ज्ञान, इंद्रादि देवताओं का ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य ब्रह्मा जी के ज्ञान वैराग्य धर्म और ऐश्वर्य की अपेक्षा न्यून है, और संसार में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वैराग्य यदि किसी का है तो सर्वोत्कृष्ट उपाधि हिरण्यगर्भ की होने के कारण, ब्रह्मा जी की होने के कारण ब्रह्मा जी का है। इसलिए ब्रह्मा जी को देवताओं में प्रथम यानी प्रधान कहा जाता है, ब्रह्मा देवानाम प्रथम। तो देवताओं में प्रधान ब्रह्मा जी है, प्रधान वो बनेगा जिसके अंदर ये अप्रतिम होगा, चारों अप्रतिम है। और प्रथम शब्द का अर्थ जब आदि करेंगे, शुरू में करेंगे, तो देवानाम प्रथम का अर्थ हो जाएगा देवताओं के पहले आदि में। तो इस संसार में जब पूर्व कल्प के प्रलय के बाद उत्तर कल्प बनता है तो सबसे पहले कोई उत्पन्न होता है तो कौन उत्पन्न होता है? ब्रह्मा जी, ईश्वर की प्रथम संतान है। इसलिए मंत्र आता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ अग्रे यानी प्रथम इस संसार में प्रकट हुए ईश्वर से, और ईश्वर ने वो ईश्वर की एकमेव संतान है परमेश्वर की साक्षात संतान, बाकी जो है ब्रह्मा जी की जो संतानें हैं वे ईश्वर की तो पौत्रादि पड़ेंगे, लेकिन ईश्वर ने ब्रह्मा जी की न तो बहन उत्पन्न की न भाई दूसरा कोई है, कोई हिस्सेदार ईश्वर की संपत्ति का ब्रह्मा जी को छोड़ करके है नहीं। इसलिए ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उनका पूर्ण उत्तर दायित्व उत्तर अधिकार किसको प्राप्त है? ब्रह्मा जी को। तो अग्रे का अर्थ है प्रथम, और प्रथम यानी ईश्वर की पहले संतान के रूप में संसार के प्रथम, इस संसार के सदस्य के रूप में यदि कोई उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी। और सबसे बाद में कौन जाएगा, जाने वाले भी बाद में वही है, पहले उत्पन्न हुए तो पहले जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, वो सबसे पहले उत्पन्न होते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, उनके जाने के बाद फिर क्या रहता है, एक अव्याकृत उपाधिक ब्रह्म ही रहेगा, महाप्रलय होगा, प्रकृति और प्रकृति भी ब्रह्म में कल्पित, ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा, सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, भूतों का भी प्रलय होता है उस समय, आकाश आदि भी, आकाश भी नहीं रहेगा, तो आकाश के बिना जो रहेगा उसकी कल्पना कभी की कि नहीं, बिना आकाश के, जैसे वायु के बिना तो आकाश की कल्पना होती है, लेकिन आकाश के बिना भी संसार रहता है, अवकाश, आकाश तो उत्पन्न हुआ है ना, और जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होगा, आकाश विभूत होने से वो जिससे उत्पन्न हुआ है उसमें विलीन होगा, और ये अवकाश भी नहीं रहेगा उस समय, खाली एक घन वस्तु रहेगी, आकाश तो अवकाश है, तो अवकाश नहीं रहेगा तो एक घनीभूत वस्तु रहेगी, वो घनीभूत वस्तु कौन है, जिसे प्रज्ञान घन कहा जाता है, प्रज्ञान ही प्रज्ञान रहेगा, अवकाश भी तो दृश्य है ना, जड़ है आकाश, कार्य है, विकार है, और प्रज्ञान घन का मतलब केवल ज्ञान ही ज्ञान रहेगा, ज्ञान को छोड़ के विजातीय दूसरी कोई जड़ वस्तु नहीं रहेगी। जिस आकाश में हम व्यवहार करते हैं अवकाश में, वह अवकाश भी अनुभूयमान होने से, भूत होने से जड़ है, और वो यदि रहेगा तो प्रज्ञान घनता कहां रहेगी फिर, तो घन का जो अर्थ होता है मूर्ति, वही वही विजातीय का अभाव बताता है वो, कि प्रज्ञान यानी प्रकृष्ट ज्ञान, वो प्रकृष्ट ज्ञान है, ज्ञान में प्रकृष्टता है, निर्विकारता, दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक वृत्त्यात्मक ज्ञान और एक बिना वृत्ति के स्वरूपभूत ज्ञान, परमात्मा का स्वरूपभूत ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो ज्ञान कहा गया है, वह ज्ञान, वह परमात्मा का स्वरूप है, वो उसे प्रज्ञान कहा जाता है, वो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता, और जो वृत्ति है वो प्रमाण से उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इसलिए उत्पत्ति विनाशशील एक ज्ञान हुआ वो विकारी ज्ञान, वो केवल ज्ञान, और प्रज्ञान है प्रकृष्ट ज्ञान, उसमें प्रकृष्टता है निर्विकारता, उत्पत्ति विनाश राहित्य, ऐसा एक ज्ञान है, और उस ज्ञान से विजातीय वस्तुअंतर का अभाव बताता है उसके साथ जुड़ा हुआ घन शब्द, प्रज्ञान घन में जो घन है, हाँ उसी से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो ईश्वर है, परमात्मा है, वो है परमात्मा, वही वही रहते हैं, और कब, जब महाप्रलय होता है उस समय वही वही है, अज्ञान की तो बीच में कार्य को देखने वाले के दृष्टि में कल्पना है ना, बिना अज्ञान के संसार बन नहीं सकता, इसलिए माना जाता है कि एक अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान भी है, लेकिन उसकी भी स्वतंत्र सत्ता उस प्रज्ञान को छोड़ करके नहीं है, ऐसा जो प्रज्ञान, वह प्रज्ञान ही प्रज्ञान बिना आकाश के रहता है, आकाश के बिना भी क्या होगा तो वो होगा, ऐसी ऐसा जो वो है परमेश्वर, और उस परमेश्वर से उत्पन्न होता है संसार में सबसे पहले यदि कोई तो ब्रह्मा जी, इसलिए प्रथम शब्द का अर्थ पहला ये करेंगे, पूर्व में करेंगे, तो इंद्रादि देवताओं से भी पूर्व में पहले उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए परमेश्वर से, और फिर उन्हें, उनके पास इतना केवल धर्म ही धर्म है, अधर्म तो है ही नहीं, शुद्ध धर्म है उनके पास, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध वैराग्य है और शुद्ध ऐश्वर्य, अप्रतिम ऐश्वर्य है। धर्म में और वैराग्य में शुद्धता का मतलब ये होता है कि धर्म की शुद्धता अधर्म से रहित, अधर्म यदि होगा तो ईश्वर अपनी संतान के रूप में उसे स्वीकार ही नहीं करेगा। पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ बनने के लिए उपनिषदों ने बताई हुई जो उपासना है, हिरण्यगर्भ की अंग्र उपासना, वह जिसकी पूर्ण हो गई है, उसकी उपासना का परिपाक हो गया है, और साथ में केवल शुद्ध कर्म ही करता गया है, कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई अनेकों जन्मों तक, इंद्र बनने के लिए ही कहा जाता है कि 100 जन्म मनुष्य के लेकर के जब यागादि वैदिक कर्म करते हुए ही बिताता है तो वो इंद्र बनता है। उसके लिए 100 जन्म मनुष्य के लगातार लेने पड़ेंगे और पाप नहीं करना पड़ेगा, वैदिक कर्म ही कर्म करने पड़ेंगे तो इंद्र बनता है। और इंद्र के भी ऊपर संसार के पूर्ण अधिपति जो है, इंद्र जिनके अधीन है, ऐसे ब्रह्मा बनने के लिए तो और भी कुछ कितना ही करना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण अप्रतिम धर्म जिसमें कोई भी रज शब्दी तो अधर्म ही नहीं, विरज है जो, और वैराग्य में माना जाता है अप्रतिमत्व, संसार के सारे पदार्थ जिसको उपलब्ध है उसे संसार के किस पदार्थ के विषय में राग होगा, और जो संसार के किसी भी वस्तु को हटाने में समर्थ है उसे किस वस्तु के विषय में द्वेष होगा, तो राग द्वेष रहित है, पूर्ण वैराग्य है। इसलिए कि सारी वस्तुएं ब्रह्मा जी को, ये पूरा संसार ईश्वर ने बनाया हमारे लिए नहीं, अपनी संतान के लिए। पिता जो कमाता है वो किसके लिए कमाता है, अपना जो उत्तराधिकारी है, अपना ही रूपांतर है पुत्र उसके लिए। तो उपनिषदों ने कहा कि ईश्वर ने संसार को बनाया हिरण्य गर्भ के लिए, सारा साम्राज्य, ये सारा संसार रूप साम्राज्य ईश्वर ने जो प्रकट किया उसका उद्देश्य है कि ब्रह्मा जी उसका उपभोग करें, उसे देखें। इसलिए सारा संसार का स्वामित्व इनके पास होने से किसी को भी अपने पास जो वस्तु उपलब्ध है उसकी, उसके प्रति उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, वो प्राप्त ही है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु ब्रह्मा जी को अप्राप्त नहीं है, प्राप्त ही है, तो किसी को प्राप्त करने की उनके अंदर कामना इच्छा नहीं रहेगी, ये वैराग्य उनका। बाकी जीवों को तो इंद्र को स्वर्ग का राज्य प्राप्त है, तो स्वर्ग विषय की इच्छा न होने पर भी ब्रह्मलोक का तो राज्य प्राप्त नहीं है ना, तो वो प्राप्त करने की इच्छा होगी। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनने की इच्छा होती है, उसके प्रति राग होता है, और संसार में सर्वोत्कृष्ट है ब्रह्मा जी, इसलिए उनका ज्ञान और उनका वैराग्य, उनका धर्म अप्रतिम है। तो शुरू में वे उत्पन्न हुए और उनके दो विशेषण हैं ब्रह्मा जी के, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता। विश्व कहते हैं पूरे संसार को, तो विश्वस्य ने सर्वस्य संसारस्य कर्ता। ईश्वर ने हिरण्यगर्भ को बना दिया और ईश्वर को बनाने की बहुत रुचि नहीं होती, फिर वे अपने पुत्र को कह देते हैं कि देखो ये यूनिट हमने लगा करके तुम्हें दे दिया है फैक्ट्री का, अब इसे जो है और रॉ मटेरियल भी दे दिया है, अपंचकृत पंच महाभूत ईश्वर बनाते हैं और उनसे हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि सूक्ष्म शरीर बन जाता है, तो हिरण्यगर्भ का निर्माण हुआ ये माना जाता है। फिर हिरण्यगर्भ को कहते हैं ये पंच महाभूत सूक्ष्म, इनसे अब स्थूल सृष्टि को बना लो अपने मनोनुकूल, हम कोई तुम्हें विक्षेप नहीं करेंगे और पूछोगे तो कुछ सलाह देंगे, ये हमारी वैदिक परंपरा ये है कि एक समय विशेष होता है तो लोग पूर्वज जब करने के योग्य हो जाते हैं ना पुत्र, तो पहले वाली पीढ़ी निवृत्त हो जाती है और वो हस्तक्षेप नहीं करती उनके कार्यों में, ऐसा करो ऐसा करो, वो चाहते हैं तो सलाह देते हैं, नहीं तो निवृत्त होकर के अपने स्वरूप में समाहित रहते हैं, ये परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, नहीं तो वो सब ब्रह्मा जी को एक तरफ रख करके कहते हैं ना कि तुम तो अपना बैठ करके मौज करो, ये करना तो मुझे है, ऐसा नहीं कहा ईश्वर ने। अपंचकृत पंच महाभूतों को बना दिया, ब्रह्मा जी को बना दिया और कहे कि अब तो मैं अपने आप में समाहित रहूंगा, स्वरूप का आनंद लूंगा और संसार तुम बनाते जाओ, कभी जरूरत पड़ेगी मुझे याद करोगे तो सलाह दूंगा, नहीं तो अपना करते रहो। ये अपनी परंपरा है पूर्व की, अभी जो है पूर्व पीढ़ी छोड़ना नहीं चाहती और उत्तर पीढ़ी उनकी सलाह को मानती है कि बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, इसीलिए विवाद हो जाता है। तो लेकिन ईश्वर ने ये कहा आचरण करके कि ऐसा करो, ये शिक्षा देते हैं। फिर ब्रह्मा जी शुरू कर देते हैं पंचीकरण करके स्थूल भूतों को बनाते हैं और स्थूल भूतों से फिर स्थूल सृष्टि 84 लाख प्रकार के शरीरों का निर्माण ये ब्रह्मा जी करते हैं, और फिर कार्यक्रम संघात उपयोगी अन्न आदि का निर्माण भी ब्रह्मा जी करते हैं, ये सारी सृष्टि का निर्माण स्थूल जगत का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, इसलिए उन्हें कहा जाता है विश्वस्य गोप्ता, ईश्वस्य कर्ता वो निर्माण करने के कारण, और जिसने निर्माण किया है वे इसका पालन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, इसलिए विश्वस्य गोप्ता, हाँ यानी भुवनस्य गोप्ता, भुवन कहते हैं ये संसार के अंदर 14 भुवन है ना, तो 14 भुवनों के वे गोप्ता है, गोप्ता कहते हैं पालनकर्ता को, गुपु रक्षिणे धातु से गोप्ता बनता है, रक्षा करते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।